की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज ई आवाज, डाउनलोड करें फ्री ई आवाज ऑफिशियल ऐप, रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से हम आपको रेडियो प्रोग्राम मसीह की आवाज़ वॉइस ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक क्राइस्ट आर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा के ताबुन से पेश किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और ये आपकी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित होगा। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। आज के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
गुड मॉर्निंग, रेडियो मसीह की आवाज़ टोरंटो आपसे मुखातब है। खुदा यीशु मसीह के जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम सामईन की खिदमत में सुबह का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। आप सबको आज के प्रोग्राम में दिली खुशी आमदेद कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक हमारे साथ होते हैं और खुदा उनके कलाम को सुनते और बरकत पाते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बस ईमान पैदा होता है सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। रेडियो मसीह का होस्ट कमल दीन और रेडियो मसीह के प्रीचर जनाब पास्टर जेम्स लूक आपकी खिदमत में हर इतवार को सुबह 8 से 9 बजे तक आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और ये प्रोग्राम आप हर इतवार को 8 से 9 बजे तक AM 770 मीटर बैंड पर टोरंटो से आपके लिए नशर किया जाता है और आप प्रोग्राम को eawaz.com के जरिए भी सुन सकते हैं, eawaz.com के जरिए और फेसबुक के जरिए सुन और देख भी सकते हैं। जस्ट लॉग इन टू www.masikiawaz.ca masikiawaz.ca। और ये मैं बताता चलूं कि अभी तक जैसा आप जानते हैं कि हम अपना ये रेडियो का प्रोग्राम जो है पास्टर जेम्स लूक अपने घर से करते हैं और मैं अपने घर से, इसलिए आप फेसबुक पे सिर्फ पास्टर जेम्स लूक साहिब को ही देख सकते हैं, लेकिन आप मेरी आवाज जरूर सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन टोरंटो में अगर आपने टेलीफोन के जरिए प्रोग्राम को सुनना हो तो 647-872-4900 647-872-4900 और मॉन्ट्रियल में 514-907-6288 514-907-6288। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में क्राइस्ट आवर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा की जानिब से पेश किया जाता है। आज का मैं ये भी बताता चलूं कि आज का जो टॉपिक पादरी साहब ने दिया है वो है ग्रेट ट्रिबुलेशन, एक अजीम तरीन शदीद दुख और मुसीबत। इसके मुतालिक खुदा उनके जिंदा कलाम में से पादरी साहब हमें आज रोशना करेंगे। आप इस थीम को जरूर अपने जहन में याद रखें। तो अजीजों, आए इससे पेशतर के प्रोग्राम को शुरू करें। जैसे हस्बे मामूल हम खुदा के नाम से दुआ के साथ शुरू करते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर लूक साहब से कि वो दुआ में हमारी ओपनिंग प्रेयर में हमारी मदद करें।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जहन जो है वो आलम बाला पर लगाए, खुदा से राबता कायम करें। खुदा खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे कायम रखा और एक और खूबसूरत दिन दिखाया। بخشتے کہ آج کے دن ہم تیری عبادت کرتے ہوئے, تیرا شکر ادا کرتے ہوئے, ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے اس دن کو گزار سکے. اے خدا خدا, ہم شکر گزار ہیں اپنے ملک کینیڈا کے لیے, جہاں پہ ہم آرام اور چین کی زندگی گزارتے ہیں. ہم اچھے موسم کے لیے بھی شکر گزار ہیں. اور اے خدا خدا, ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کو تو ہر طرح کی مصیبتوں سے آئے خدا دور رکھ. اور خاص طور پہ آئے خدا دعا کرتے ہیں تمام دنیا کے لیے, جس میں آئے خدا کووڈ 19 کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. آئے خدا خدا, میں تجھے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے گناہ معاف کر. آئے خدا تو لوگوں کی دعاؤں کو سن, تاکہ یہ مصیبت جو ہے یہ ہم سے ٹل جائے. آئے خدا خدا, ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام ان سننے والوں کے لیے جو اس وقت اپنے ریڈیو اور کمپیوٹر آن کر کے تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں تیرے مقدس کلام کے ذریعہ سے. اے خدا, ہم سب کو برکت دے اور بخش دے کہ یہ کلام جو ہے ان کی زندگی تبدیل کرنے والا کلام ہو سکے. ہم شکر گزار ہیں اپنے اس ریڈیو اسٹیشن کے لیے, آواز کے لیے, AM 770 ٹورانٹو کے لیے, جس کے ذریعے سے آئے خدا یہ پروگرام لوگوں تک پہنچتا ہے. ہم ان کے سٹاف کے لیے بہت برکت چاہتے ہیں. اور آئے خدا خدا, ہم اس وقت ان تمام لوگوں کو نہیں بھولتے جو کہ کمزور اور بیمار ہیں, ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں, ہمارے خاندانوں میں, ہماری کمیونٹی میں ہیں. سب پہ رحم کر, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نام ہمیں دے رکھے ہیں, کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اور آئے خدا خدا, ہم شکر گزار ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور تو نے بہت سارے لوگوں کو اچھا بھی کیا ہے. آئے خدا, ہم شکر گزار ہیں سروش کے لیے جو آسٹریلیا میں ایکسیڈنٹ میں آئے خدا انوالو ہوا تھا, اور آئے خدا وہ بالکل تندرست ہے. آئے خدا خدا, ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی جیمی ڈی کے لیے جو کہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے, اس کی تیسری سرجری ہونے والی ہے. تو اے خدا خدا, اس پہ رحم کر, ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ ہو. اسی طرح سے آئے خدا اس بہن کے لیے جو ایجیکس میں ہیں, اس خاندان کے لیے جو مس ساگا میں ہیں, اس بہن کے لیے جو تھنڈ بے میں ہیں, اس جوان کے لیے جو ہیوسٹن ٹیکسس میں ہیں, اس بہن کے لیے جو فیصل آباد پاکستان میں ہیں, اور اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ جو تیرے حضور میں آئے خدا گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں, ان کی دعاؤں کو سن, ان پہ رحم کر, باقی مالا پروگرام میں ہمارے ساتھ ہو. یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے مقدس نام میں, آمین.
آمین. وقت کیسا ہی کیوں نہ ہو, لیکن خدا ان کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں, خدا ہمارے ساتھ ہیں. داؤد نبی فرماتے ہیں, خدا ہماری پناہ اور قوت ہے, مصیبت میں مستحد مددگار, اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں, خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں, خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی تگیانی سے ہل جائیں. ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو, یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرت ہوتی ہے. خدا اس میں ہے, اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا. قومیں جھنجلائیں, سلطنتوں نے جنبش کھائی, وہ بول اٹھا, زمین پگھل گئی. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے, یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں. وہ زمین کی انتہا تک جنگ معقوف کراتا ہے, وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے, وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے. خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا, میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے, یعقوب کا خدا ہمارے ساتھ ہے. خداوند اپنے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے, آمین. عزیزوں, آئیں ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں وقت کے متعلق, اور ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں. وقت بہت نزدیک ہے یسوع,
سے آج پادری جیمز لوک ہمیں بتائیں گے اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا ان کا کلام ہم تک روک دیں. جناب پاسٹر جیمز لوک. ہیلو
ہیلو
اوکے
Hello.
Hello. Yes, Pastor. I'm waiting for you.
Hello, sir.
جی
یہ کنیکشن ٹوٹ رہا تھا ابھی ابھی ٹھیک ہے تو آپ مجھے میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟
ہاں جی آ رہی ہے بھائی صاحب.
اوکے سو آئیے ہم اپنے آج اس میسج کی طرف چلے جو کہ خدا نے ہم کو دیا ہے تاکہ آج جو ہے آج ہم اپنے میسج کو سن سکیں. پہلی تو بات یہ ہے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ہمارا ریڈیو سے کنیکشن جو ہے وہ بار بار ٹوٹ رہا ہے تو آئی ہوپ کہ دس ول کنٹینیو. فیس بک پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں لیکن جو لوگ صرف ریڈیو پہ سن رہے ہیں ان کے لیے ذرا تھوڑا سی مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ وہ کنیکشن ٹوٹ رہا ہے. بہرحال آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف چلے. آج کا جو میسج ہے وہ گریٹ ٹریبولیشن ہے یعنی کہ بھیانک حالات ہیں بھیانک مصیبت ہے. اور سب سے پہلے خدا باپ خدا بیٹا خدا روح اس کے نام میں آمین. ہم آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے ہم اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اور پچھلی دفعہ ہم نے پچھلے دو سنڈیز میں ہم نے بات کی تھی 10 کنواریوں کی کہ کس طرح سے 5 کنواریاں جو ہیں وہ تیار ہیں اور 5 تیار نہیں ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں وہ 5 کی بجائے 8 تیار نہیں ہیں صرف شاید 2 یا 1 تیار. اور ہمیں یہ بات جو ہے وہ غور سے سننا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ کس طرح سے ہماری تیاری جو ہے وہ آیا صحیح ہے یا نہیں ہے. آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ پولس رسول نے بھی تھسلنیکیوں کی کلیسیا کو بھی یہ بات کہی تھی کہ جب خدا یسوع مسیح نے آنا ہے اس سے پہلے بہت ساری آزمائشیں آنی ہیں بہت ساری مصیبتیں آنی ہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ گناہ میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ میں میرا یہ پکا یقین ہے اور ایمان ہے کہ COVID-19 جو ہے یہ خدا کی طرف سے ایک طرح سے جب خدا کو غصہ آتا ہے تو خدا جو ہے وہ بہت منصف خدا بھی ہے. منصف کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمیں سزا ملنی چاہیے لیکن چونکہ وہ رحیم ہے وہ غصہ کرنے میں دھیما ہے اس لیے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو خدا ہم پہ رحم کرتا ہے. اور یہ رحم کے لیے ہمیں بہت دعا میں رہنا چاہیے ہمیں اس کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تھا میرے اور آپ کو بچانے کے لیے تاکہ میں اور آپ بچ سکیں اس گناہ آلودہ زندگی سے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں. تو اس نے اپنی جان تو تھی وہ صلیب پہ دی تھی میرے اور آپ کے لیے. اس لیے اگر ہم ان باتوں پہ غور کریں اور ان باتوں کو سمجھیں تو آپ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب خداوند یسوع مسیح نے یروشلم میں رہ کر اس زیتون کے پہاڑ سے جب انہوں نے اس ہیکل کو دیکھا اس ٹیمپل کو دیکھا جو کہ یہودیت کی सेंटर ऑफ वर्शिप थी, तो उन्होंने कुछ कहा था वहां पे। आइए हम सुनते हैं, और वो हमें मत्ती रसूल बताते हैं कि उसके 24वें बाब में और उसकी 15वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक हम सिर्फ देखना चाहते हैं। 15वीं आयत से 27वीं आयत तक मैं दरखास्त करूंगा अपने भाई एल्डर कमलदीन साहब से कि वो हमारे लिए ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा पढ़ें।
उजाड़ने वाले मकरू चीज के मुतालिक हम खुदा का कलाम पढ़ें और सुनेंगे। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हूं। बस दुआ करो कि तुम उजाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक जाती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। खुदा उनका जिंदा कराऊं।
बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा था कि ये जो नैरेटिव है जो कि हमने पढ़ा है, ये रोंगटे खड़े करने वाला ये जो नैरेटिव है, यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने, मैंने जैसे आपको कहा कि कोहे जैतून पे खड़े होके शागिर्दों ने उनके पास आके पूछा था, क्योंकि उस वक्त जो हैकल थी वो सामने नजर आ रही थी, मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं। 6 दफा हम गए हैं इसराइल में, और वो मुकाम जो है वहां पे अभी एक चर्च बना हुआ है, जिसको के चर्च ऑफ, उसको आंसुओं का चर्च कहते हैं, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल को देख के आंसू भी बहाए थे। उनको इतना अफसोस हुआ था कि खुदा ने उनके लिए एक इंतजाम किया है और वो इस इंतजाम को समझ नहीं पाते, और बल्कि अपने हट धर्मी से खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत करते हैं। आज भी यही बात है कि कितने लोग हैं जो इस बात पे यकीन करने से कासिर हैं, वो नहीं चाहते कि वो खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक पढ़ें या सुने। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो बहुत मोहब्बत और प्यार की तालीम है, वो ऐसी तालीम है जिससे उनके नाम से जो है वो बीमार शिफा पा जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन हम इंसान होते हुए हम शैतान के पंजे में इस तरह से उलझ गए हैं कि हम इन बातों पर गौर भी नहीं करना चाहते। हम तो खुदा को खुदा भी नहीं मानना चाहते, हम उससे भी कासिर हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब तुम उजाड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी ने मार्फत ने किया है मुकद्दस कलाम पर खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, यानी कि दानियल नबी की किताब जो है वो पुराने अहदनामे का मुकाशफा है, वो आने वाले हालात को बताती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि आगे चल के हम देखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो बात कही थी ये तकरीबन 33 AD में कही थी, यानी कि एनो डोमिनाई जिसको कहा जाते हैं, कबल अस मसीह, या हम ये जो है बाद अस मसीह है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस वक्त तकरीबन 33 साल के थे, और उसके थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग कहते हैं, कुछ ये कहा जाता है कि उन्होंने ये उस वक्त रही थी जब उनका शहाना दाखला हुआ है। तो ये बात जो है उनको, उन्होंने उस हैकल को देख के उनके आंखों में आंसू आ गए थे कि खुदा ने उनको एक वर्शिप जगह दी है और ये लोग उसकी कितनी कितनी उनके दिलों में कोई, वो एक तरह से इज्जत नहीं है, वो इस तरह से खुदा की तालीम पे चलते नहीं है। आज भी यही बात है। और उन्होंने क्या कहा था, ये जो हमने सीन देखा है, ये सीन 33 AD में खुदा यीशु मसीह ने कहा था। और क्या हुआ, हम देखते हैं कि जबकि खुदा ने इंसान से इतना प्यार किया कि यूहन्ना रसूल जो है वो हमें बताते हैं पहले बाप और उसकी 14वीं आयत में, एल्डर साहब ये जरा निकालिए, पहला बाप 14वीं आयत है, उसमें ये कहा गया है द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड मेड हिज ड्वेलिंग अमंग अस, वी हैव सीन हिज ग्लोरी द ग्लोरी ऑफ द वन एंड ओनली सन हु केम फ्रॉम द फादर फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। यहां पे यूहन्ना रसूल हमें बताते हैं कि किस तरह खुदा ने इंसान से मोहब्बत की थी और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था ताकि वो बेटा जो है वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो, अपना खून बहाए ताकि हमारी माफी हो सके। हाँ जी एल्डर साहब
जी, कौन सी आयत?
14वीं आयत, वन पहला बात 14वीं आयत, यूहन्ना रसूल की जी,
और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल,
जैसा बाप के इकलौते का जलाल, यानी खुदा जो है वो खुद इंसान के रूप धार के इस दुनिया में आया है। लेकिन यहूदियों ने उनको नहीं पहचाना, यहूदियों ने नहीं पहचाना, बल्कि यहूदी जो है वो खुदा की तालीम पे अमल नहीं करते रहे, वो रिचुअल्स में घुसे हुए हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो रिचुअल्स में घुसे हुए हैं, यानी कि वो रसूमात में गुम हैं, वो असली दिल से पहचानते नहीं हैं कि खुदा जो है वो कौन सा खुदा प्यार करने वाला खुदा है, वो कौन सा खुदा है जो कि आपकी सलामती के लिए हमेशा की जिंदगी आपको दे सकता है। और यही हमने देखा है यूहन्ना रसूल हमें बताते हैं। अब ये हालात जो है यहाँ पे हमें बताए गए हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा है जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं और जो कोठे पर हो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरें, और जो हामला हो जो दूध पिलाती हो बस दुआ करो कि तुम जाड़ो में या सबत के दिन भागना ना पड़े। अब ये बात जो है आज तो हम इस बात को समझते हैं, लेकिन जब आप 33वीं AD में जाते हैं बाद अज मसीह, तो उस वक्त ये बात नहीं हुई थी। ये बात कब हुई थी? ये बात एग्जैक्टली 70 AD में हुई थी। 70 AD यानी 70 बाद अज मसीह। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया, वो वहां पे नहीं थे, वो आसमान पे चले गए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें कही हैं, तो उसके एक हफ्ते के बाद खुदावंद यीशु मसीह की, और एक हफ्ता नहीं बल्कि कुछ दिनों के बाद उनको सलीब पे दे दिया गया, उनकी मौत हो गई, वो कब्र में उतार दिए गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और फिर उसके बाद वो 50 दिन 40 दिन के बाद वो आसमान पे चले गए थे। लेकिन ये बातें जो उन्होंने कही थी ये 70 AD में बिल्कुल 100% जो है वो मार्ज वजूद में आई हैं। कैसे? क्योंकि 70 AD में रोमन्स ने यरूशलेम पे हमला किया था, रोमन्स ने यरूशलेम पे हमला किया था, और वहां पे उन्होंने ईंट की ईंट बजा दी थी। और ये कहा जाता है कि जिस तरह से यहां पे मिसाल दी गई है दानियल नबी की, जब दानियल नबी की किताब आप पढ़ते हैं, उसका 12वां बाब पढ़ते हैं, 12वां बाब और पहली आयत हम देखना चाहते हैं। एल्डर साहब ये जरा देखें क्या कहता है بارہواں باب اور اس کی پہلی آیت جو ہے،
اور نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جس سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔
یہ بات جو ہے نبوکدنضر کے وقت میں دانیل نبی بہت دور کی بات کرتے ہیں، دانیل نبی 586 بیفور کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، اور 586 میں پہلی دفعہ نبوکدنضر نے یروشلم کو تہ نہس کیا تھا، اس کو برباد کیا تھا، اور وہی بات جو ہے وہاں پہ ایک بہت گھناؤنی چیز ہوئی تھی، اور وہ گھناؤنی چیز یہ ہوئی تھی کہ وہ نبوکدنضر جو ہے ایک بادشاہ تھا، گریک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اینٹیوکس فور، اس نے جو تھی وہ جو وہاں پہ عبادت ہوتی تھی اس کو اس نے تہ نہس کیا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سور کی قربانی جو تھی وہاں پہ گزرانی تھی، جبکہ یہودی لوگ سور سے بہت نفرت کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ انسان نے خدا کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور جب خدا کی باری آتی ہے تو یہی بات جو ہے ہمیں سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے کہ بخدا خدا کبھی نہ کرے کہ وہ اس کا غصہ جو ہے وہ ہم پہ آ جائے، گو کہ وہ غصہ کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا جو ہے وہ انسان کے خلاف اس کا جی آ جاتا ہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلی دفعہ جب خدا کو غصہ آیا تھا تو اس نے نوح کا وہ طوفان بھیجا تھا جس سے ساری دنیا جو ہے وہ پانی کے اندر آ کے تو مر گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، جب خداوند کو غصہ آیا تھا اور وہ جو سدوم اور عمورہ تھے وہ دونوں شہر جو تھے وہ آسمان سے گندھک کے ساتھ اور آگ کے ساتھ تباہ ہو گئے تھے۔ جب ہم اسرائیل جاتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بحیرہ مردار جو ہے، دا ڈیڈ سی جو ہے، اس کا پانی آج تک کڑوا ہے، کیونکہ اس کے نیچے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں شہر جو ہیں یہ مسمار ہوئے تھے، یہ تباہ ہو برباد ہوئے تھے، کیونکہ خداوند کا غصہ اس وقت بھی آیا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ آج بھی خداوند کا غصہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے COVID-19 کی وجہ سے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ابھی اس کی دوسری لہر شروع ہو گئی ہے، انسان کی موت جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اٹلی میں جب یہ ہوا تھا تو کیا ہوا، تو انہوں نے میس گریوز بنانے پڑے ان کو، کیونکہ ان کی اتنی اموات ہو رہی تھی، اتنی موتیں ہو رہی تھی کہ انہوں نے بلڈوزر سے لاشیں پکڑ کے تو اس میں ڈالی ہیں۔ خدا سے ڈرے، خداوند یسوع مسیح نے پھر آنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تباہی جو ہے خداوند یسوع مسیح نے 33 اے ڈی میں کہی تھی اور یہ 70 اے ڈی میں بالکل 100% ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے، اگر آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ وہ تباہیاں جو ہیں ان کی جو ہے نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ان کی نشانیاں کیسی نظر آتی ہیں کہ انہوں نے ایسی ٹنلز رکھی ہوئی ہیں جس میں کہ جس طرح سے یروشلم دو بار تباہ ہوا ہے، اس کی ہیکل تباہ ہوئی ہے، اسی طرح سے وہ نشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم جو اسرائیل ہے اس پہ حملے ہوئے ہیں اور کس طرح سے تباہیاں ہوئی ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک کینیڈا میں ایسا ہو، یا امریکہ میں ایسا ہو، یا پاکستان میں ایسا ہو، یا انڈیا میں ایسا ہو۔ خدا کو غصہ نہ دلائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ خدا جو ہے وہ اس کا غصہ دھیما ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جب ابامینیشن آف ڈیسولیشن ہوئی ہے، جب اس کو اسی سے कहा जाता है उसी से कनेक्ट किया जाता है। वो टाइटस के जमाना में हुई थी और उसने वहां पे यरूशलेम में जो कहा जाता है कि वहां पे जो हैकल थी वहां पे इतनी कत्लो गारत हुई थी कि वहां पे खून की नदियां बह गई थी। कहा जाता है कि 8,500 लोग जो हैं उसमें घायल हुए थे, उसमें मरे थे। और वही जो कि होली ऑफ होली थी, होली प्लेसेस थी, वो खत्म हो गई। यहूदियत की जो भी उनकी वर्शिप सेंटर था वो खत्म हो गया। खुदा ना करे आज ये बात हम पे खुदा गुस्सा हो और हमें इस बात की निशानदही, हमें सबक सीखना चाहिए कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने वापस आना है। उसने वापस आना है और उसने हमें हमेशा की जिंदगी, वो तो चाहता है कि हमें हमेशा की जिंदगी दे। और वो जो है हमें 14वां बाब और 6ठी आयत यूहन्ना रसूल बताते हैं। एल्डर साहब ये जरा निकालिएगा, 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत बताया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किस तरह से खुदावंद का गुस्सा ठंडा होता है और वो क्या हमारे लिए करना चाहते हैं। एल्डर साहब
जी, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता।
राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे भाई और मेरी बहन, कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। अगर आप उनकी उसकी खुदावंद के बेटे की आमद के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आज आप इस बात पे गौर करें, क्योंकि उसी में जिंदगी है, उसी में लाइफ है, उसी में हमेशा की जिंदगी है। उनको आप अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कीजिएगा। अभी हम एडवेंटिस्ट सीजन में जाने वाले हैं, अगले संडे से एडवेंट सीजन शुरू होगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के लिए हम तैयार होंगे। जब हम दूसरी आमद के लिए तैयार नहीं हैं, तो पहली आमद के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, ये मौका है, ये सीजन, क्रिसमस का सीजन जो है, क्रिसमस इज अबाउट क्राइस्ट। आपने बहुत सारे बोर्ड्स भी देखे होंगे लॉन्स में रखे हुए, इसीलिए लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि क्रिसमस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुतालिक है, हॉलीडेज नहीं है। हाँ, हॉलीडेज, ये स्कूल बंद होते हैं, सब कुछ बंद होता है, लेकिन हॉलीडेज तो होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं? वो इसलिए ताकि हम उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह को अच्छी तरह से उसका इस्तकबाल कर सके। उनकी पहली आमद जो है वो होने वाली है, उसके लिए तैयार हैं आप? क्या आप तैयार हैं? अपने दिल से पूछिएगा। पहले तो आप ये देखें कि आप उस मसीहा को जानते भी हैं कि नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो हमसे रابطہ कायम करें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आपको उसका पाकलाम जो है वो मुफ्त में भेजेंगे, आपसे बातचीत करेंगे प्यार और मोहब्बत के। और प्यार और मोहब्बत जो है मसीहत में सबसे पहले आता है। पहले अपने खुदा से प्यार करो, फिर अपने पड़ोसी से प्यार करो। इससे अच्छी तालीम आपको कहां मिल सकती है मेरे भाई और मेरी बहन? गौर कीजिएगा, आप झूठी तालीम पे, झूठे नबियों पे मत जाइएगा। आप सच्ची तालीम और सच्चे नबी को पहचानने की कोशिश करें, सच्चे खुदा को पहचानने की कोशिश करें। आज मौका है, आज निजात का दिन है। अगर आप इस तरफ रजू करें, आप देखें तो खुदा आपसे पर्सनली बात करेगा और ये बात जो है आपकी जिंदगियां तब्दील होने वाली बात होगी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन,
आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए जो आपने हमें हमसे शेयर किया। और आपने बताया कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और जब हमेशा की जिंदगी पाते हैं तो फिर उस शहर में, उस आसमान पर जहाँ खुदा यीशु मसीह हैं, खुदा बाप हैं, तो वहाँ हम उनके साथ सुकूनत करेंगे, रहेंगे।
کیونکہ مکاشفہ نبی بتاتے ہیں, مکاشفہ کی کتاب میں یہ ہنہ عارف بتاتے ہیں, لکھا ہے اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اور دریا کے آر پار درخت تھے اور وہاں اس جگہ 12 قسم کے پھل لگتے تھے, ہر مہینے میں ایک پھل ہوتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لعنت نہ ہوگی اور اس شہر میں خداون کے بندے ہوں گے, خدا ہوں گے, خداون یسوع مسیح خدا باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھے ہوں گے اور ہمارا نام جو خداون یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا اور وہاں نہ رات ہوگی اور نہ سورج اور چراغ کی ضرورت ہوگی, وہاں خدا کا جلال ہوگا. تو آئیں سنتے ہیں اس شہر کے متعلق ایک خوبصورت گیت جو ہم لگانے والے ہیں, امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اسے پسند کریں گے.
آسمان پہ شہر ہوگا, بادلوں کی بار ہوگا, آسمان پہ شہر ہوگا, بادلوں کی بار ہوگا, زندگی وہاں پہ ہوگی, زندگی وہاں پہ ہوگی, زندگی کا راج ہوگا, آسمان پہ شہر ہوگا, بادلوں کے پار ہوگا, آسمان پہ شہر ہوگا. आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। आसमां पे शहर होगा। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। आसमां पे शहर
रिजो, आपने गीत सुना कि आसमां पे शहर होगा, वहाँ हमें जिंदगी होगी, वहाँ दुख और तकलीफ ना होगी, खौफ और खतरा ना होगा, अंधेरा तारीकी ना होगी, बल्कि उजाला होगा, खुदा का जलाल होगा। और खुदा के जो खून खरीदे लोग हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, खुदा का वादा है, कलाम फरमाता है कि वो वहाँ होंगे। उस जगह कितनी मुबारक जगह होगी, जिस तरह पारी साहब अक्सर बताते हैं, यरूशलम जब गए थे तो बताते हैं, उस जगह को जब देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप आसमानी मकामों पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये वादा जो लिखा हुआ है, इंसान महसूस करता है खुदा की नजदीकी, अगर आप सच्चे दिल से उसके करीब आना चाहते हैं। पारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनाउंसमेंट रखना चाहता हूँ आपके सामने, जैसा कि हम मैसेज के बाद अनाउंसमेंट करते हैं। आप सबको दिली मुबारक, दिली खुश आमदेद कहते हैं, और बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप हर इतवार को सुबह 8 से 9 बजे तक हमारे साथ होते हैं और खुदावंद का कलाम सुनते हैं और बरकत पाते हैं। टोरंटो में इसको सुनने के लिए टेलीफोन नंबर है 647-872-4900, 647-872-4900, और मॉन्ट्रियल में इसको सुनने के लिए 514-907-6288, 514-907-6288। और अगर आज के मैसेज के हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पादी साहब से बराह रास्त टेलीफोन पे बातचीत कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। उनका टेलीफोन नंबर है 416-454-2581, 416-454-2581। और अगर आपको रेडियो प्रोग्राम के मुतालिक या चर्च के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या डोनेशन देना चाहते हैं तो आप जरूर मुझसे रابطہ करें। मेरा टेलीफोन नंबर है 647-339-0397, 647-339-0397 मेरा टेलीफोन नंबर है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको खुदावंद के जिंदा कलाम की कॉपी चाहिए, यानी मुकद्दस बाइबल मुकद्दस की चाहिए, तो आप जरूर हमसे रابطہ करें, पादरी साहब से या मुझसे या हमारे चर्च में आप टेलीफोन कर सकते हैं और अपना नाम और टेलीफोन नंबर छोड़ दें, और अर्ली फुर्सत में मैं आपसे या चर्च वाले आपसे बात करेंगे और फिर आपको हम बाइबल मुकद्दस फ्री ऑफ चार्ज भेज सकते हैं। उसी के साथ साथ बताना चाहता हूं कि पारी साहब ने जैसा जिक्र किया, और मसीही लोग जानते हैं कि ये अगले इतवार से एडवेंट सीजन शुरू हो रहा है, यानी आमद के इतवार। तो वो पारी साहब ने मुझे कहा कि आने वाले इतवार को, जिस तरह के हर फ्राइडे को हम इबादत करते थे, इस आने वाले जुम्मे को पादरी साहब ने मुझे बताया कि इबादत होगी, और उन्होंने ईमेल भेजी है। और उसके मुतालिक पादरी साहब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बता दें, अगर ईमेल नहीं भेजी तो भेज दें, अगर भेज दी है तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं।
जी बहुत शुक्रिया। चूंकि एडवेंट सीजन शुरू हो रहा है अगले संडे से, तो हमारी इबादत जो है वो संडे को नहीं बल्कि फ्राइडे को होती है। उर्दू की इबादत है और वो हम 7 बजे करते हैं, और इसीलिए वही टाइम जो है वो हमने रखा है कि फ्राइडे को 7 बजे शाम को जूम पे, आप जूम अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप अपने फोन पे या अपने कंप्यूटर्स पे zoom.com आप डाउनलोड कर लें, फ्री डाउनलोड है, उस पे मैं आपको लिंक भेजूंगा, जो कि लिंक आपको उसी वक्त मिलेगी या मैं ईमेल के जरिए आपको भेज दूंगा। तो आप मेरी ईमेल का इंतजार करें और जरूर हमारे साथ रابطہ कायम करें, हमारे साथ वर्शिप करें, ताकि हम जान सकें कि किस तरह से हमने खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह को हमने वेलकम करना है उसकी फर्स्ट कमिंग पे। उसका जन्मदिन है और उसके बाद जो है वो बच्चा जो है किस तरह से पैदा होता है, किस तरह से उसकी पेशनगोइयां होंगी, हम इन चार हफ्तों में हम उनको कवर करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी तैयारी जो है वो उसके लिए उस खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं, और हम उसके लिए हम अगले चार इतवार जो है वो देखेंगे। और फिर उसके बाद हम ये भी प्लान करेंगे कि हम 24th नाइट को, यानी कि वही 7 बजे के करीब ही हम कैंडल लाइट सर्विस करेंगे, तो अपनी कैंडल्स भी आप रेडी रखें। तो आइए हम इन तमाम इबादात में हिस्सा लें बढ़ चढ़ के और उसमें शमूलियत करें, और भी लोगों को कहें ताकि वो, क्योंकि जूम पे तो कोई बंदिश नहीं है, इसमें एडवांटेज ये है कि हम सारी दुनिया से लोग इसमें जुड़ सकते हैं और जहां जहां भी आप हैं हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ इस इन इबादात में हम शरीक हों। बहुत शुक्रिया
जी भाई साहब। वक्त जल्दी से गुजर रहा है, लेकिन मैं आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और आप इसमें मुख्तसर जवाब दीजिए, क्योंकि आपने बताया कि मैं चाहता हूं कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट इज वेरी स्केयरी, जो खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद है बड़ी खौफनाक आप बताया सीन होगा, इसके मुतालिक आप क्या बताएंगे, किस तरह हम इससे बच सकते हैं और खुद हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं?
देखिये, पहली तो बात यह है कि वो उनकी दूसरी आमद जो है वो खौफनाक उन लोगों के लिए है जो कि खुदावंद के साथ चलते नहीं है, लेकिन जो बिलीवर्स हैं, जो खुदावंद जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खुदावंद का गुस्सा जो है उनकी वजह से दूसरे लोगों पर भी नरम पड़ जाता है। आप देख लीजिए कि हम इन मुल्क ममालिक में गो के ये ममालिक जो हैं, ये वेस्टर्न ममालिक जो हैं, यानी कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये तमाम के तमाम ये उसी खुदा को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे आज भी खुदा की रहमतें जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बिलीवर्स हैं, और बिलीवर्स जो हैं गो के बहुत कम होते जा रहे हैं। ये ममालिक जो हैं ये भी उस प्यार मोहब्बत से दूर चलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ पे बसते हैं, और आप देखिए सारी दुनिया से लोग यहाँ पे भागे चले आते हैं क्योंकि यहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। वो इसीलिए बहती हैं कि ये लोग खुदा को प्यार करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं,
खुदा को प्यार करते हैं भाई साहब, और दूसरा ये इंसानियत की इज्जत करते हर इंसान की, कोई मजहब नहीं देखते, कोई कलर नहीं देखते, कोई रेस नहीं देखते, और वो इंसानियत की इज्जत करते हैं क्योंकि इनके दिलों में खुदा उनका खौफ है और इनके दिलों में वो है कि खुदा मोहब्बत है, हम एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें। इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये लोग काफी इन मुल्कों में आना चाहते हैं,
इसलिए हम लोग जो खुदा के साथ प्यार करते हैं, खुदा पे बिलीव करते हैं, उसके बेटे पे बिलीव करते हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उन पे वो मुसीबतें नहीं आएंगी। मैं सोचता हूं कि खुदा उनको उस मुसीबतों से पहले ही अपने साथ उठा लेगा। अभी आपने पिक्चर देख जो मैंने दी है, किस तरह से खुदा यीशु मसीह जो है वो बादलों पे आएंगे, और जब हम पहला तसल्ली की उसका 4 बाप हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से खुदावंत के इस्तकबाल के लिए वो तमाम बिलीवर्स जो हैं वो आसमान वो हवा में उनका इस्तकबाल करें,
उठाए जाएंगे,
तो वो उन मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर जाएंगे
जी। तो ये भाई साहब, ये इसलिए फिर इसका मतलब है जो बिलीवर्स हैं, ईमानदार हैं, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उन्हें डरने की या खौफ करने की जरूरत नहीं है,
नहीं है।
तो इसका मतलब है कि अगर
मजबूत रहना है, लेकिन 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 जब वो मुसीबतें आएंगी, और जब वो मुसीबतें आएंगी तो बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे। आजकल बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं, और आपको मालूम है कि हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने ये भी क्लेम कर दिया है कि हम वो दूसरे मसीहा बने हैं, लेकिन वो मसीहा नहीं है, वो सारे के सारे तबाह हो चुके हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तो फिर आप हर हर आंख उनको देखेगी, हर हर इंसान उनको देखेगा।
हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप टेलीफोन की बेल सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वक्त खत्म हो रहा है। खुदावंद ने चाहा तो फिर अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदावंद यीशु मसीह हम सबको अपने पनाह में रखे और उसकी पाक मर्जी से फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज।
मौजूद सामीन, हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं कि आपने प्रोग्राम मसीह की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर सुना। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आपने बहुत बरकत पाई होगी। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अपना और अपने अजीजों कारिब का ख्याल रखें। अगले इतवार को सुबह 8 से 9 बजे तक हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा ने के बान मसीह यस्सू का फजल आप सब पर हो, आमीन।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
The COVID-19 pandemic in Canada is serious. We must continue to practice all public health measures. Follow local guidelines for gatherings, maintain physical distancing, wash your hands, wear a mask, and download the COVID Alert app. If you have symptoms, even mild ones, stay home. Protect yourself and others. Learn more at canada.ca/coronavirus or 1-833-784-4397. A message from the Government of Canada.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेण ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
ओ मैं क्या जल्दी तैयार हो जा, फर्नीचर पसंद करदे करदे भी टाइम लगना।
हाँ, सोडी फर्नीचर ही तो जाना है, अपने घर दे कोल एयरपोर्ट रोड वाली लोकेशन ते।
ओ नहीं, हुन आपा उना दी कैनेडी लोकेशन ते जाना, हुन उना दा पूरा स्टाफ पूरी क्वालिटी नाल इको छत नीचे अपनी सर्विसेज देवेगा।
सोडी फर्नीचर कम्युनिटी दा सब तो पुराना फर्नीचर स्टोर हुन अपना फर्नीचर कैनेडी लोकेशन तो ही सेल करेगा। अपनी पसंद दा फर्नीचर वधिया डील्स ते लैण लई अज ही आओ इना दी कैनेडी लोकेशन 142 कैनेडी Road South, Brampton. Call 905-874-7171.
जेकर तुहानू कोई ट्रैफिक टिकट मिल गई है
या स्मॉल क्लेम कोर्ट विच तुहाडे उत्ते किसी ने दावा कर दिता है
या तुसी किसी उत्ते दावा करना है,
जेकर तुहाडा किराएदार तुहानू किराया नहीं दे रहा
या मकान खाली नहीं कर रहा या सिटी तो तुहानू घर संबंधी कोई नोटिस आ गया है,
जेकर तुहाडे नाल जॉब दे उत्ते हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन बिना नोटिस तो कटिया गया है,
इना सारियां समस्यावां दे हल लई तुहाडे हक सच इंसाफ दे पहरेदार
VSR ला ऑफिस। कॉल करो 416-602-4164-1660-2002 VSR ला ऑफिस।
COVID-19 ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ 2 meter ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। COVID-19 ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ontario.ca/coronavirus ਤੇ ਜਾਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ